نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير مكي دور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور جو آپ کی پیدائش سے لے کر ہجرت مدینہ سے پہلے تک کا دور تھا اس کو مکی دور کہتے ہیں. الحمدللہ آج اس کا پارٹ ٹو ہے. ہم نے ابھی تک جو چیزیں دیکھیں, سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ اللہ کا یہ ایک احسان ہے کہ اس نے مومنوں میں ایک نبی بھیجا. تو اللہ تعالیٰ کا کسی بستی, کسی علاقے, کسی ملک اور زمین کے کسی ٹکڑے پہ ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا انسان ہو جو انسانوں کا تزکیہ کرے, ان کی تربیت کرے, ان کو تعلیم بھی دے اور ان کو قرآن اور حکمت سکھائے. اور امت مسلمہ اس لحاظ میں خوش قسمت ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مکی دور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو اس کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے. عام طور پہ آپ کی نبوت سے پہلے کے 40 سال زندگی کے اور نبوت کے بعد کے 13 سال. پھر ہم نے اس میں نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جس کو لوگ بہت عزت سے دیکھتے تھے. قریش قبیلہ تھا, عام الفیل کے سال میں تھے, ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا. رضاعت میں سب سے پہلے اپنی والدہ نے, پھر ابو لہب کی لونڈی صویبہ نے کچھ دن دودھ پلایا اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے. اور ہم نے ان کا قصہ تفصیل سے پڑھا تھا کہ کیسے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیتے ہی اللہ تعالیٰ نے برکتیں دینی شروع کر دی تھیں. پھر اسی طرح آپ کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے. آپ کے باپ عبداللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا ذبح ہونے سے اور اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا. والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی والدہ کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو آپ کے چچا کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے پھر آپ کی حفاظت کی, یعنی دادا اور دادا کے بعد چچا. آج ہم اپنے دور میں اس چیزوں کو کیسے لیتے ہیں, ہائے یہ بچہ بیچارہ رول گیا, کھپ گیا, اس کو تو یہ نہیں ملا, باپ کا پیار نہیں ملا. یعنی ہم باتیں کر کر کے نا اگلے کو اور ہی لٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ خود بیچارہ نہیں ہوتا لیکن ہماری باتیں سن سن کے وہ بیچارہ ہو جاتا ہے. پھر ہم نے نبوت سے پہلے کے کچھ واقعات دیکھے تھے جس میں ایک شق صدر تھا. اللہ تعالیٰ نے جن سینوں میں قرآن دینا ہوتا ہے, جن کو اللہ نے اپنا پیغام دینا ہوتا ہے نا, تو ان کو دھوتا ہے. آپ کے میرے لیے بھی یہ عمل کی بات ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں قرآن کیوں یاد نہیں ہوتا یا ہمارا دل اس میں کیوں نہیں لگتا, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں میں گندگی ہے. اور وہ واقعہ ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا تھا کہ شیطان کا جو حصہ تھا وہ اس میں سے نکال دیا گیا. جوانی ہوئی تو تجارتی سفروں پہ جانے لگے اپنے چچا کے ساتھ. بحیرہ راہب جو تھا اس نے آپ کے اندر کچھ نشانیاں دیکھی اور 20 سال کی عمر میں جنگ فجار میں آپ شریک ہوئے, معاہدہ حلف الفضول کا حصہ ہوئے. اسے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو کمیونٹی ورک میں حصہ لینا چاہیے. ہم بعض دفعہ اپنے دین کے نام پر بہت ہی نٹ شیل میں بند رہتے ہیں اور پھر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے کام ہے نا, مثال ہے ووٹ ڈالنا ہے کہ نہیں, الیکشن میں حصہ دینا ہے کہ نہیں, کوئی شہر کو صاف کرنے کا کوئی پلان کر رہا ہے کرا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل لیڈر بھی تھے اور آپ ایک شہری بھی تھے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی, جو ہمارے انڈو پاک کلچر میں ایک سانحے سے کم نہیں ہوتی. اور عورتیں افسوس کرنے جاتی ہیں اس عورت کے گھر جس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہو جائے. حالانکہ حضرت خدیجہ کو اللہ نے وہ برکت دی کہ آپ کی ساری اولاد ان سے ہوئی. آپ کی ازواج دوسری بیویوں کی نسبت حضرت خدیجہ سے زیادہ رقابت محسوس کرتی تھی کہ آپ اس عورت کو نہیں بھولے. پھر اس کے بعد 35 یعنی 35 ایئر کی عمر میں بیت اللہ کی جب دوبارہ تعمیر ہوئی تو آپ نے حصہ لیا اور حجر اسود کے موقع پہ ایک جھگڑے کو ہوتے ہوتے بچا لیا. نبوت سے پہلے کی آپ کی سیرت اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین تھے. آپ سچائی اور امانت میں ممتاز تھے, بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. صلہ رحمی کرتے تھے, تنگ دست کی مدد کرتے تھے, میزبان کی میزبانی کرتے تھے. ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا ہے کیا سوچ کے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر دینی طور پہ بھی دیکھیے تو آپ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی, शराब नोशी से हमेशा दूर रहे और बुरी महफिलों में कभी शिरकत न की। किरदार, जिसको किसी ने कहा ना कि खुदा तुझे जिद्दते किरदार दे। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज के सेशन को हम शुरू करेंगे नबवी जिंदगी के मराहल से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नबूवत के बाद किस किस मरहले से गुजरी। तो हम नबी सल्लम के मक्की दौर को तीन बड़े हिस्सों में डिवाइड करेंगे। यहाँ से आप नोट करेंगे टोटल कितने थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी जिंदगी के मराहल। अगर फर्स्ट यानी यकम नबवी से लेकर 10 साल, नबूवत मिलने के शुरू के 10 सालों को अगर हम तीन हिस्सों में बांटें, तो पहले 3 साल वन ऑन वन बेस दावत के थे, जिसको बाद लोग खुफिया दावत कहते हैं। मुझे लफ्ज़ खुफिया कुछ मुनासिब नहीं लगता, लेकिन बहरहाल मैं इसको वन ऑन वन बेस्ड कहती हूँ कि जब भी कोई दावत नहीं होती है तो लोगों को शोहरत तो होती नहीं उस बंदे की, तो लिहाजा आपको मुझे इसमें एक अमल का नुक्ता है। आप किसी भी ऐसे शख्स को अपने इस कुरान से जोड़ते हैं, क्लासेस से जोड़ते हैं, दर्स की दावत देते हैं, फ्लाइट से नहीं आएंगे, वो इश्तहारा देख के नहीं आएंगे। कहीं भी कोई इंसान नया है, उसको कोई जानता नहीं, उसकी बात कभी किसी ने सुनी नहीं, वन ऑन वन बेस्ड आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं करें, इनवाइट करें। मेरे तो बस नहीं चलता, मैं एक तो वैसे भी अवॉइड करती हूँ खुद से कोई बात करूँ, लेकिन यकीन करें कि इस वक्त जो हरम में जितने लोग हैं, मुझे तो लगता है इंडिया से हैं, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, इन तीन कल्चर के लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हज उमरे का बहुत शौक है। हम यहाँ बैठकर और जो भी कर रहे हैं ना उमरे के दौरान, दावत कीजिए। कैसी छोटी छोटी चीज़ें, पम्फलेट्स, बुकलेट्स, बात करके थोड़ी सी उनको दें, स्कैन करें। हमारे पास एक स्कैनर है, आप किसी का फ़ोन खोलें, सलाम अलैकुम भाजी, क्या हाल है, ठीक हो, मैं भी पाकिस्तान से आई हूँ, क्या करती हैं आप, अच्छा मैं एक स्कूल में जाती हूँ नूरुल कुरान है, अच्छा वहाँ एक बाजी है, वहाँ और भी सिस्टर्स हैं पढ़ाती है, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा दूँ, चलो फ़ोन खोलें। उसका फ़ोन खोलें, उनका कैमरा खोल के तो आपके अपने फ़ोन के वो QR कोड के आगे रखें। आपको लगता है कि लोगों के पास नेट नहीं होता, आप उसके छोटे छोटे प्रिंट आउट बना लें। यानी आजकल भी अगर नहीं दावत देंगे तो कब देंगे। और मैं अक्सर सोचती हूँ हम अगर तवाफ कम भी कर लेंगे ना, हमारा अपना ज़ाती मामला है ना, लेकिन मैं अपने लिए गोल की बनाती हूँ कि एटलीस्ट 10 लोगों को डेली कुरान से जोड़ें। इनलाइटन द हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान, जितना जोर लगता है, देखिए वो आपका सदका जारी होंगी। आप में से जितने लोग हैं कोई भी अपना सोचिए कि आप कैसे शुरू में आए थे। मैं तो आज भी जब भी कभी शौरी तौर पे पढ़ाने बैठती हूँ या कुछ पढ़ती हूँ या मुझे कोई खैर मिलती है, तो मुझे वो सिस्टर याद आती है जिसने पहली दफ़ा मुझे तलब दिलवाई थी कि आप चल के तो देखिए, आप सुन के तो देखिए, बाद में ज्वाइन करें। यानी शुरू में एकदम आप किसी को कहें ना इधर ये वो 1 साल का कोर्स फिर लेना, वो कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं। छोटी सी दावत, दुल्हन को लेने जाते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को हम हॉस्पिटल से लेने जाते हैं, लोगों को बुलाइए, मैं गाड़ी भेज दूँ, अच्छा मैं बीच में रुक जाऊँ। तो ये जो खुफिया दावत थी ना, ये वन ऑन वन बेस थी और बड़ी बातें सुननी पड़ी। लोगों ने कहा ये सर फिरे लोग हैं, पता नहीं इनको क्या सवार हो गया, किसी ने कहा कि इनको ऐसे ही चढ़ गए। यानी पहले 3 साल मक्का वालों ने नोटिस नहीं लिया, और आपको था कि सारे हीरे मोती 3 सालों में जमा हो गए हुए थे, अबू बकर सिद्दीक, हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत जईद, और फिर उसके बाद जो शुरू से होते होते अल्हम्दुलिल्लाह वन बाय वन बात हुई। और इसे एक अमल का नुक्ता लिखे, 10 लोग भी कहेंगे ना, मतलब 10 मुख्तलिफ लोग आपको कोई बात कहे, आप नहीं मानेंगी, आपकी दोस्त वही बात कह दे आप मान जाएंगे। ट्रस्ट होता है, बॉन्ड होता है, आपकी दोस्तें आपकी वजह से आएंगी, आपके कहने पे आएंगी। प्यार चलता है प्यार चला लें, गुस्सा चलता है गुस्सा चला लें, लाड चलता चला लें, जाके बैठ जाएं घर में, मैंने जाना ही नहीं तुम्हारे बगैर, उठो चलो भाई बहनों, चलो कंघी करो, मैं साथ लेके जाऊंगी। कई ऐसे वाकयात है कि इस तरह का लाड दिखाया और आज वो दुआएं देती हैं अपनी दोस्तों को, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अलमारु अला दीनी खलीली ही। तो बहरहाल आपका भी मेरा काम है, जिस तरह नई बात हो वहाँ वन बाय वन कीजिए। दूसरा मरहला क्या था, एलानिया तबलीग और कुरैश की मुखालफत थी। जब 3 साल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता हर घर का कोई बच्चा, किसी की कोई बीवी, और आम तौर पे अमूमन देखिए जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, बच्चे, औरतें जो इमोशनल भी होती हैं, ये ज़्यादा ही मुतासर होती, मर्द नहीं होते ही मुतासर। कहते तुम क्या पढ़ने पढ़ाने लगाई रखती हो, चुप करो नमाजें पढ़ो, सबको आती है पढ़नी। तो औरत के अंदर अल्लाह ने ना एक वो रखा है लुब्रिकेटिंग सा एक इफेक्ट, वो जोड़ भी लेती है, तोड़ भी लेती, रोदो भी लेती, काम भी ज्यादा करती, तवाफ भी ज्यादा करती, सही भी ज्यादा करती, गिफ्ते भी ज्यादा करती, शॉपिंग भी ज्यादा कर, सब कुछ औरतें करती हैं। वो कहते हैं ना, है तस्वीरें कायनात में वजूद जन से रौनक। अगर सिर्फ मर्द होते दुनिया बोर कितनी होती, सोचे हम। चार बुढ़े बुढ़े थके थके बैठे हैं, हजार किस्म के मर्द। वो कहते हैं ना कि सारी दुनिया की कशिश औरत के लिए और मर्द की कशिश औरत में। वखलक लकुम मा फिल अर्दी जमीयन, मैंने सारा कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया और तुम मेरे लिए बन जाओ, ये अल्लाह ने हमें भी कहा। तो बहरहाल ये जो 10 साल के अंदर से दूसरा मरहला था, इसमें ऐलानिया तबलीग, इसमें भी बिलाल को मारे पड़ी, इसमें बीबी सुमैया को शहीद किया गया, इसमें जो गुलाम थे, जो बेचारे जुनैरा थी और मुख्तलिफ गरीब गुरबा थे, वो फिर पिसे। और इसके बाद भी तीसरा दौर था मक्का से बाहर दीन का फैलाओ, दावत का फैलाओ, जिसमें हबशा में दावत गई, फिर बैत अकबा होती गई और मदीना में पैगाम चलता गया। तो हम इंशाल्लाह अब इससे आगे इन्हीं स्टेप्स को देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो नबूवत के शुरू में थे, वो क्या थे? नबूवत के कुछ आसार शुरू हो गए थे। हर चीज़ के आसार होते हैं, आपको नहीं सूझता? अगर आपको भी नहीं सूझता ना, तो अभी आपका ताल्लुक डिवेलप करना ज़रूरी है अल्लाह से। बंदे को पहले सोचने लगे क्या हो रहा है। और उन आसार में पहली चीज़ क्या थी कि आप गारे हिरा में इबादत के लिए जाने लगे। और एक वक्त ऐसा है कि रमज़ान का पूरा पूरा एक महीना वहाँ रहते, ये फितरत की पुकार थी। उस वक्त सिर्फ आपकी एक ही ज़ौजा थी, खदीजा, बच्चे भी थे। अल्लाह के नबी एक मुकम्मल कामयाब घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे थे, ताजिर थे, आज की ज़बान में बोल दूँ तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस था, बेताज बादशाह थे। बीवी भी मोहब्बत करने वाली खूबसूरत बीवी, उम्र में बड़ी थी तो क्या हुआ, उसको वो सारी खूबियां माइनस हो गई। हमारे जरा लड़की बड़ी हो तो उसको फौरन निग्लेक्ट करते हैं, नहीं, हमें को छोटी दिखाई है, अब तो वजन भी कर करके देखते हैं जी, बिलीव नहीं, इसका वजन करते हैं, फिर उनका डीएनए चेक करते हैं, फिर क्रोमोसोम चेक करते हैं, फिर उसके टेस्ट डॉक्टरों से कराते कि इनका मैच ठीक होगा कि नहीं, और एंड पे तलाक हो जाती। अभी को रास्ते में बता रहा था कि उन्होंने शादी वाले दिन अपने कमरे में अपने मियाँ को देखा। आप में से अक्सर ने ऐसे ही किया होगा, तो चल गई ना। और वो जो पहले चेक कर रहे हैं अच्छी है नहीं, जरा टेस्ट कर ले, जरा देख ले, हमारा दिल मिलता नहीं, वो शादी के 2-2.5 माह बाद खत्म हो जाती है कहानी। तो बात को समझने की जरूरत है। हजरत खदीजा बहुत मिजाज शनास थी, और मुझे और आपको अपने शोहर का अगर मिजाज नहीं पढ़ना आता तो कुरान पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। हमारे में से बहुत सारी औरतें अपने मर्दों को उनका मिजाज ना समझ के दीन से दूर करती हैं, मैं दावे से कह सकती हूँ। और दीन के नाम पे फिर नहीं, आप असर देर से पढ़ते हैं, आप मुनाफिक है। आपको फजर और ईशा मुश्किल लगती है, मुनाफिक है। आप सिगरेट पीते हैं, आपके पास तो फरिश्ते ही नहीं आते। मैंने पढ़ा है जी, मैं किताब में पढ़ती हूँ, मेरा तो कोर्स चल रहा है, वहाँ मैं क्लास ले रही हूँ। आपकी सारी बड़ी पढ़ाई की किताबें जो है ना, वो बिल्कुल बेअसर हो जाती हैं। अपनी नेकी को दूसरे का गुनाह ना बनाए। तबलीग का असूल मैंने अपनी जिंदगी में रखा, इतना ना किसी को खेचे कि अगला चिढ़ के कह दे जाओ मैंने नहीं पढ़नी। एक गाड़ी जाती है तो आप गाड़ी रोकते हैं तो पहले ही रोक लेते हैं ना, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई पिलर है, खंबा है, कोई दीवार है, तो उसे 10-20 फीट पीछे रोक लेते हैं कि जाकर ठोकती है तो फिर ही रोकते हैं। हम तबलीग में एक बार दफा ठोका ठाकी करते हैं, फिर जब वो मियाँ चीखते हैं, फिर आप कहते हैं मैंने नहीं इनको कहना, अब मैंने इनसे बोलना छोड़ दिया, अब मैंने इनसे बिस्तर अलग कर लिया, अब मैं ऐसी हूँ क्योंकि मैं नेक हो गई हूँ। एक खातून है, वो मुझे किसी ने कहा कि मसला है उनके से क्या है, कहती मैं दुरूद बहुत पढ़ती हूँ। तो फिर क्या ये कोई मसला है? कहती नहीं, मसला कुछ और है, दुरूद जितना पढ़ा है उसके बाद वो अपने मियाँ को पास ही नहीं आने देती, कि मैं बहुत पाक हूँ, मैं आपके साथ सो ही नहीं सकती। अब मुझे बताइए, जब आप ऐसा दीन पेश करेंगे तो क्या होगा? आप जितनी मर्जी नेक बन जाएं, लेकिन चिड़ में फिर आपके मियाँ अगर नेक थे ना तो कम हो जाएंगे हमेशा। आपने आपको अगले की जगह पे ले आए, ठीक है आपकी मर्जी, इस फाइन। और जहाँ स्टैंड लेना होता वहां हम कभी लेते भी नहीं है। हराम की जिंदगियां गुजारे कई लोग, चूंकि बात शोहर बीवी की हो रही है ना, कई जगह बिल्कुल नहीं साथ रहना चाहिए लेकिन रह रहे, क्या करें, किधर जाएंगे, बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, अम्मा बाप फोत हो गए हैं, अब मैं किधर जाऊं? गलत है, एक जुमले में सारी बात अब छेड़ी है ना, तो उसका जवाब दे दूं, आदतों का इख्तलाफ गवारा है, इस फाइन। वो ऊंचा बोलते हैं, आप ऐसा बोल, इस ओके। वो नहाने के बाद टॉवल बेड पे रख देते हैं गीला हमेशा, इट्स ओके। वो धुले हुए कपड़े हमेशा जमीन पे और उतरे हुए कपड़े हमेशा बड़ी इज्जत से बेड पे रखते हैं, इट्स ओके okay. वो 4 दफा दिन में कहते बेगम चाय बना ले, पकोड़े बना, इट्स ओके 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 ओके. लेकिन जहां कोई हलाल हराम का फर्क है वहां आप स्टॉप हो जाए, एक्सक्यूज मी मुझे आपसे बात करनी. करके देखिए, कभी भी गलत बात ना मनवाएंगे आपसे और ना आपको टीस करेंगे. एक गाली खा के दूसरी खाने के लिए हम खुद तैयार हुए होते, नहीं खानी, हाथ उठे आज के बाद नहीं उठेगा. तो जहाँ एक्ट करते हैं ना वहाँ नियम करते हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जू ही नबूवत के दिन करीब आए ना, तो अगर आज जैसी कोई ना समझ बीवी होती तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ना बनते. कोई एक जज्बाती से इंसान होता है. हजरत खदीजा ने आपको इतना असिस्ट किया कि उसी गारे हिरा में उनके लिए खाने लेके जाती थी. अल्लाह के नबी की उम्र 53 ईयर्स की थी, कब 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 13 साल मक्का के जब पूरे हुए तो 53 ईयर्स थे. गारे सौर जब हमने देखी तो वहाँ ये बात मैंने सोची कि हिजरत मदीना के वक्त नबी सल्लम की उम्र 53 साल थी. और पहाड़ी देखी है अपने गारे सौर की, और 40 साल की उम्र में गारे हिरा पे चढ़ते थे. आज अगर आपको बस पे उतार दिया जाता कि जरा आप जाइए ऊपर, जरा गारे हिरा में होके आइए, अभी तक आप कहाँ होते. और बीबी खदीजा रोज अपने नबी के लिए खाना लेकर जाती थी, सत्तू और पानी. ये जुमला हमने अपनी इस्लामियात की वो पतली सी किताब में बचपन से पढ़ा. फिर इसी तरह 3 साल तक मामूल यही रहा. फिर आपके ऊपर एक और असर है कि आपको तन्हाई महबूब हो गई, और ये आपके लिए भी जरूरी है. ये जो हर वक्त की सोशलाइजिंग है ना, ये अच्छी नहीं होती. वो कहते हैं ना कि दुनिया की महफिलों से तंग आ गया हूँ यार, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन. आप अपने आप को चेक करें, क्या आप हर वक्त फन मौज पार्टी दावत किटी पार्टी फुलानी पार्टी अब मेहंदी अब उपना हर वक्त इसी में लगे रहते हैं? इट्स नॉट गुड. इसको कहते हैं कसीरुल इख्तलात. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों को रमज़ान में तो बिल्कुल ही छोड़ देते थे, एक चीज़ कसीरुल इख्तलात थी. और आप देखिए, आप अपनी रूटीन लाइफ पे रहें, बड़ा सही सुकून होता है. खाना पीना भी मुनासिब होगा आपका, जो आपका दिल करता है आप बिन खा लेंगे. कपड़े भी आप जो रोज़ पहनते वही पहन लेंगे, और आपकी रूटीन बड़ी अच्छी, सुबह शाम की तो थकन भी नहीं होगी. लेकिन आप देखिए कि 3 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो थे, और तनहाई थी. अब हम ऐसे शोहर को क्या कहते हैं आज, क्या है दिल बुझ गया इनका, मुर्दा है, इनको तो कुछ सोशलाइजिंग अच्छी नहीं लगती, ये है वो है. नहीं लगती. इसका ये नहीं मतलब कि वो बदमिजाज थे, बस नहीं दिल करता शादियों में जाने को. आज भी कई लोग हैं उनको शादियां नहीं अच्छी लगती, उनको महफिलें रौनक रपा जहाँ लोग खुशी खुशी जाते हैं वो वहां नहीं जाते. क्यों? वो कहते हैं कि वहां बहुत खुराफात होती है. बहरहाल, जो सबसे बड़ी खूबसूरत निशानी थी आपकी नबूवत के असरात, वो सच्चे ख्वाबों का आना था. आप जो ख्वाब देखते वो सुबह के सफेदी की तरह नमूदार हो जाता. और एक हदीस से पता चलता है कि सच्चे ख्वाबों का आना नबूवत का 46th 46वां हिस्सा. अगर आपके खानदान में किसी को सच्चे ख्वाब आते हैं, अच्छी बात है, सच्चे बंदे को सच्चे ख्वाब आते हैं. लेकिन हमेशा ये असूल नहीं चलेगा. क्यों भला? कुरान क्या कहता है? मिस्र के एक मुशरिक बादशाह का ख्वाब सच्चा हो गया, जिसकी ताबीर पूछी हजरत यूसुफ से और बाद में उन्होंने बताई. लेकिन अमूमी तौर पे सच्चे बंदे के ख्वाब सच्चे होते हैं. बहरहाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये एक इशारे थे. और अक्सर लोग जो हमारे पास स्टूडेंट बन के आते हैं ना, तो वो भी बताते हैं हमें ख्वाब आने लग गए थे. और मैंने खुद भी फील किया कि जिसको अल्लाह ने कुरान देना होता है ना, कुरान की तफसीर, कुरान का, उससे पहले कोई खास ख्वाब आते हैं. जैसे एक सिस्टर है ना, तो वो कहती थी कि मुझे हर रोज हर दूसरे दिन, यानी कहने का मुराद कि अक्सर मुझे ख्वाब में आता था कि मैं रास्ता भूली हुई हूँ. कभी कहती मैं लॉस्ट हूँ, कभी मैं किसी सहरा में हूँ. फिर अब क्या हुआ? कहती अब जब से कुरान पढ़ा ये ख्वाब नहीं आता. कुरान क्या कहता है? बाबा दादा का दालन फहदा. तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारे होते हैं. फिर उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ जिसको आप कहेंगे वही का नजूल शुरू हुआ. रमजानुल मुबारक की 21वीं शब थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही के साथ गारे हिरा में तशरीफ लाए. हमारे यहाँ मारूफ है ना कि 27वीं रात, इसमें भी इख्तलाफ है कोई भी हो, लेकिन वो 27वीं रात वो है जब अल्लाह ने आसमाने दुनिया पे नजूल किया था, जिसको आपके लौहे महफूज में हुआ था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आया था वो कहते हैं कि 21वीं शब थी। और ये मैंने आपके लिए वही चीज़ नोट की जो ज़्यादा ऑथेंटिक है, कोई भी हो हमें इसे किसी से भी कोई इनकार नहीं है। जिब्राइल आए, नबी सल्लम को दिख नहीं रहे थे, फील हो रहे थे और इंसानी रूप में थे, यानी फरिश्ता नहीं लगे लेकिन बहरहाल आपको फील हुआ। और फिर वो पहली वही सूरत अलक की 5 आयात, इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक खलक अल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुक अल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मालम यालम। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। अगर आप इस पूरे वही के पैगाम को देखें तो आपको इसमें एक बहुत खूबसूरत रब दिखेगा। और वो क्या है कि पहली वही है और बातें किस इल्म की हो रही हैं। पहला लफ्ज़ देखिए, इकरा, पढ़िए। आप हैरान होंगे कुरान का मिजाज क्या है। पहली वही का लफ्ज़ इकरा, पढ़िए। और कुरान पाक का आगाज जो इस वक्त तरतीब में हमारे सामने, सूरत फातिहा का तो एक अलग से बुकलेट कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर आप सूरह बकरा से शुरू करें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, वहाँ किताब की बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता कि ये कहने वाला क्या कह रहा है, आपकी ज़बान मुबारक पे क्या है, फ़माना भिखारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। काबा को देख के जो पहली दफ़ा फीलिंग होती है, एग्जैक्टली वही फीलिंग रब्बे काबा के कुरान को पहली दफ़ा समझ के होती है। इसीलिए अक्सर मैं कहती हूँ पहला कुरान पहली मोहब्बत है, ये नहीं भूलती। पहली दफ़ा जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, शुरू में हर चीज़ में इमोशंस होते हैं। स्कूल में जाए नए नए आप घबरा रहे हैं, नई कॉपी पकड़ी है तो डर लग रहा है ख़राब ना हो, खाना बनाने बैठते हैं तो नया नया काम हो तो डर लगता है ये ना हो जाए, पानी नाप नाप के डालते हैं, बाद में जो मर्जी डाल दो, जो मर्जी खिला दो, घर वालों को घोल घाल के खा लेते हैं ना। हमारा हाल पता क्या है, हमारा ईमान पुराना हो गया, खोटे हो गए। हम गलतियां कर कर के भी कहते फिर क्या है, हमारा हक है गलती करना। जब बंदा नई नई गलती करता है तो रोता है। हमें से हर एक को अपना जायजा लेना चाहिए। और यहाँ देखिए लफ्ज़ एक करो, पढ़ो, कौन सा बिस्मी रब्बी का, ये कौन सा होता है भाई। कितने लोग कहते हैं कि एक खरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक से मुराद है कि कुरान पढ़ो, हाथ खड़ा करें, कुरान पढ़ने की बात है, इस्लाम दीन, यहाँ कुरान का लफ्ज़ किधर है ही नहीं है। कुरान एक करो पढ़िए, बिस्मी रब्बी का, आपने रब के नाम के साथ, यानी कोई इल्म भी लो उससे कनेक्शन तुम्हारा रब से जुड़े। एक साइंस टीचर जो सरासर 100% साइंटिफिक फिगर्स की बातें करता है, अगर उसका दिल रब से जुड़ जाए ना, तो वो अपनी साइंस की क्लास में बच्चों को अल्लाह वाला बना के निकलेगा। ये देखो ये कैसे है, ये सूरज देखो, ये चांद देखो, ये सितारे देखो, ये देखो ग्रेविटी 9.8 है। अल्लाह ने तो हमारे अपने जिस्म में इतनी निशानियाँ दी। जूलॉजी का एक टीचर, मन बॉडी को पढ़ाने वाला टीचर, बिस्मी रब्बी का वाला काम कर जाएगा कि देखो ये अल्लाह ने क्या बनाया। और इसको अपोजिट लीजिए, ये बड़ी खतरे की बात बताने लगी हूँ। साइंस टीचर अगर खुद अल्लाह से जुड़ा होगा ना, तो साइंस पढ़ा के लोगों को अल्लाह का कुर्ब देगा। और कुरान टीचर, मैं अपना लफ्ज लेके बोल रही हूँ, कुरान टीचर भी अगर अल्लाह से नहीं खुद जुड़ा हुआ, तो कुरान पढ़ा के भी अल्लाह से नहीं आपको जोड़ेगा। वो आपकी ग्रामर अच्छी करा देगा, आपकी तजवीद अच्छी करा देगा, आपके मखारे जो अच्छे होंगे, आपको फिक्र का मास्टर बना देगा, रब से नहीं जोड़ेगा। रिलेट करना नहीं आता, कुरान अलग, जिंदगी अलग, अमल अलग, किताबें कहीं कुछ। आप देखिए कि ये आवाज़ आ रही है ना, इसमें पीछे दो तारें जुड़ी हुई हैं, दो में से एक तार हटा दें आवाज़ बंद हो जाएगी। प्लग के अंदर दो तारे होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दुनिया का इल्म और आखिरत का इल्म, ये दो कह लीजिए कि मुख्तलिफ चैनल है। जब ये दोनों सीधे जाके लगेंगे ना, फिर आपके बच्चे कामयाब होंगे। तो इस पे एक लेक्चर आप सुनना चाहें तो यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर है, पहली वही का पैगाम। आज के दौर में आपके बच्चों का दिल क्यों नहीं लगता कुरान में, دنیاوی تعلیم کا اتنا غلغلہ پڑ گیا کہ اللہ کی بنا، اور جو دنیا کی تعلیم میں جاتے ہیں ان کو قرآن والے نہیں اچھے لگتے، قرآن نہیں اچھا لگتا، اور جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو دنیا والے تو زہر لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ منافق اتنی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، یہ فلاں ہیں جی، یہ تو ایسے ہیں جی، یہ تو دیکھو ذرا کیا کھاتے ہیں، یہ کیا پہنتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کی بنا ایک سیکنڈ ان کے ساتھ نہ بندہ رہ سکے. نہیں وہ دنیا تو ایک مچھر کا پر تھا، اس کو مار دو. ہائی اسٹرابریز کھا رہے ہیں، اتنا مہنگا پھل، استغفر اللہ. کسی نے ایک دفعہ میرے سامنے ہوا کسی کو فروٹس، اور اس میں بڑے اچھے بیریز، اچھے مہنگے فروٹ تھے، تو کسی نے کو دیکھا استغفر اللہ ہم تو جی جنت میں ہی کھائیں گے. تو میرا سوال ہے کہ جو دنیا میں اسٹرابریز ہیں وہ کون کھائیں، گریپس کون کھائیں؟ یا تو کفار کھائیں، ظاہر ہے بےچارے وہ ان کو آباد نہیں ملنا تو ادھر کھلا دیتے ہیں، تو یا وہ گل گل کے سڑ جائیں. اللہ نے کیوں بنایا؟ کھولیے نار کو، اس کا ایک ایک دانہ دے کے لگتا ہے کہ اللہ نے پیچھا چھڑایا ہوا ہے. اگر ہم جیسے لوگ ہوتے، دنیا 4 دن کی، اللہ کہتا پکڑ کے ان کو پوٹلے میں پکڑا دو. جس نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی وہ آخرت کیسی بنائے گا؟ اور 3-4 دن سے جب سے اسپیشلی مکہ میں ہے نا، تو پہاڑ ان کے دیکھ رہی ہوں، کوئی پہاڑ مجھے ایسے لگ رہا ہے اونٹ کی کوہان ہے. میں سوچ رہی تھی کیونکہ ناروے میں بھی پہاڑ ہے نا، اب وہاں کے پہاڑ اور یہاں کے پہاڑوں میں ہے کوئی چینج ملتی؟ زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں عرب ہے، عربوں کے ماحول، عربوں کے رہن سہن جیسے پہاڑ ہے، شبیہیں بنتی دکھتی ہیں آتے جاتے. میں دیکھتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے دیکھنا، تو کبھی پہاڑ دکھ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے، کہیں کھڑا ہے، کہیں گھوڑے کی شکل ہے، اور بالکل براؤن ڈل جیسے ایک خشک بنجر پہاڑ ہے. جس ملکوں میں دوسری طرح کے وہاں دوسرے ہوتے ہیں. تو کیا پتہ چلا ساری بات کا؟ کہ اللہ کا قرب لیجیے، یہ آپ کے عمرے، یہ آپ کے طواف، یہ آپ کی سعی. اگر آپ کو یہاں سے کچھ ایک نیا انسان بنا کے نہیں لے جا رہی، تو پھر اگلا عمرہ بھی بک کرا دیں. تب تک عمرے پہ عمرہ کیجیے جب تک کہ آپ بدل نہ جائیں. اور یہ کنیکشن ملانے آتے ہیں ہم سب یہاں. اگر آپ کا مدینہ میں رہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن نہیں ملا، اور مکہ میں رہ کر قرآن سے اور اللہ سے نہیں جڑا، تو پھر بات نہیں. وہ کہتے نا کہ مکہ مدینہ جائے گل نہیں مکدی جب تک دلوں نہ مکائیے. پتہ نہیں بابا بلے شاہ کا ایک کلام ہے کہ حج بھی کیتے جاندے ہو تو جھوٹ بھی بولے جاندے ہو، نفس نو قربان کر دے نہیں تے بکرے ذبح کیتے جاندے ہو. یہ نہیں کہ وہ نہیں کرے تو یہ نہیں کرنا، مطلب یہ ہے کہ اقرب اسم ربی کا. دوسری بات، اس پہ جتنا کو غور کرا سکتی ہوں اس ایک آیت کے بعد، دیکھیے الذی خلق، ٹھیک ہے، خلق الانسان من علق. اس نان ایجوکیٹڈ سوسائٹی میں کس کو پتہ ہے علق کیا جمع و خون؟ اکرم ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یعنی ایمبریالوجی پڑھا دی، سائنس ہے یہ. پہلی وہی سائنس پڑھا رہی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا. دوسری چیز پہلی وہی میں، پہلی چیز کیا تھی؟ پڑھو، دوسری لکھو. اور آج امت اسی سے ایک ہو رہی ہے، پڑھنا اور لکھنا اور غور و فکر کرنا. افلا یتدبرون القرآن، یہ دو تین چیزیں مل جائیں دین بنے. پورے قرآن میں چند دفعہ لفظ وسجد، سجدہ کرو، ورک آؤ کا لفظ بھی چند دفعہ ہے، ہاں نماز کا کئی دفعہ، قیم الصلاۃ. اور آپ کہتے ہیں کہ تدبر پہ کتنی آیتیں قرآن کی، کسی کو یاد ہے؟ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، ان نبی خلق سماوات والارض، 59 آیتیں ہیں جس میں غور و فکر کی دعوت ہے، اور اگر انڈائریکٹ مفہوم لیں تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور آج امت اتنا ہی کم سوچتی ہے. یہ بھی عبادت ہے. آپ جاتے نا وہاں چپ کر کے حرم کو دیکھتے رہے، کیا کالے رنگ کا کیا ہے، کوئی فنسی نہیں، کوئی اس کے اوپر موتی ستارے نہیں لگے ہوئے، لیکن کشش کتنی ہے اس میں. آسمان کو دیکھیں تو جتنا کائنات پہ غور و فکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. اب ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل کیجئے، پہلی دفعہ یہ آیتیں نازل ہوئیں، نیا تجربہ. وہ کہتے ہیں نبی اور رسول ملک میں ملاقات ہوتی ہے، آپ کا حال کیا ہوا؟ کانپتے دل کے ساتھ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنا دیا. تھوڑی سی فکر مند تو ہوئی لیکن عقل مند تھی. آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اس وقت عیسائی تھے. اس وقت کون سا مذہب تھا جو الہامی مذاہب میں تھا؟ عیسائیت تھا. پورا واقعہ آپ کو حدیث میں ملتا ہے. جب ان کے پاس لے گئیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی ناموس ہیں नामूस, एक लफ्ज होता है जासूस, ये उसी से मिलता हुआ। ईमान बिल मलाइका की सीरीज में इसके ऊपर काफी बात हुई है। उन्होंने क्या कहा कि ये तो वो नामूस है, यानी मुअज्जज़ राजदान फरिश्ता, जिसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान होता, यानी मेरी उम्र छोटी होती, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा, क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक और अमीन हूँ, यानी मैं बड़ा मशहूर हूँ इनमें। वरका बोले, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमरे हक लेकर आया, लोग इसके दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। ये बुखारी की रिवायत नंबर 3 है। तो क्या पता चला, वो जिसको कहते हैं ना कि हीरे की कदर जौहरी जानता है, वरका भी नौफल अपने वक्त के एक आलिम थे, वो पहचान गए। और यहाँ से एक और बात नहीं देखी, जिसने भी हक बात ली लोग उसके दुश्मन हुए, खानदान के, फैमिली के, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ऐसे लगते हैं। अल्लाह के नबी को तो उस वक्त बड़ी हैरत हुई, लेकिन बाद में ये सब हुआ। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखिए कि कितनी समझदार खातून है, खुद तो फौरन मुसलमान हो गई, और उनको ये पता चल गया कि मुझे अल्लाह ताला एक नबी की बीवी बनने का शर्फ अता कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है, पहला सबक आपने पढ़ लिया, और जो कुरान पढ़ने बैठते हैं ना, उनका दिल क्या कर रहा था, हाय जल्दी से कल आ जाए और मैं अगला सबक पढ़ूं। एक होता है तजस्सुस, वी कैंट वेट, फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड। अल्लाह के नबी को ना अंदर से वो खुद खुद लग गई, अब दोबारा कब आएंगे जिब्राइल, मेरा उस्ताद दोबारा कब आएगा, नहीं आए, खामोशी। अल्लाह के नबी सल्लम फील करने लगे, जिसको आप कहते हैं ना कि क्रेविंग फील होने लगी, कब आए। कुछ अरसा वही की बंदिश रही, इस पीरियड को कहते हैं फतरतुल वही। अल्लाह के नबी इतने अपसेट थे कि आप कभी कभी सोचते कि मैं पहाड़ पे जाके ऊपर से छलांग लगा दूं। और ये तो वो जाने जिसको ये कभी मजा मिला हो, लोग इसको एक दफा अपनी जिंदगी में ले आए। कभी आप स्टूडेंट्स की कहानियां सुना करें, कैसे इंजॉय कर करके सुना रहे होते हैं कि हमें क्लास से क्या मिलता है, कुरान की तफसीर, सब कुछ आपको कोई पढ़ा देगा, लेकिन आपके दिल के तारों को कोई छू जाए, ये दुआ करें आपको वो मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसके बाद बंदे में तड़प महसूस होती है। यहाँ उम्रा तो हम ज्यादा दिन नहीं रह सकते ना, बार बार भी आएंगे तो कितनी को दफा साल में आ जाएंगे, लेकिन कुरान आपके पास है। जिसके पास कुरान है वो कभी तनहा नहीं हुआ, वो अमेरिका में भी जाके तनहा नहीं होता, चाइना में, जापान में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में चला जाए, वो कहता है मेरे पास है अल्लाह। यहाँ तो हम थोड़ी देर के लिए एक जरा मजे लेने आते हैं ना, असल जिंदगी पूछिए तो कुरान वालों की। कोई नहीं आपको रोकता, आप 24 घंटे कुरान से जुड़े रहे, 7 डेज अ वीक, नो प्रॉब्लम, कोई पैकेज नहीं है उसमें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुरान। और मैं अक्सर कहती हूँ मरने से पहले एक दफा ये मजा चखिए, क्यों ये जन्नत में भी नहीं होगा, मैं तो सोच के उदास हो जाती हूँ, हाय ये कुरान जन्नत में नहीं होगा। बहरहाल इसके कुछ अरसे के बाद दोबारा वही का नजूल हुआ, और उसके बाद कौन सी आयतें उतरी, या अय्युहल मुद्दसिर قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر। پہلی وحی کے بعد دوسری میں تبلیغ کا حکم ہوا۔ اب ترتیب دیکھیے دین کی، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پہلے اپنے اوپر لیجئے اس پیغام کو، اور اگر آپ آیتیں دیکھ لیجئے تو یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। ये क्या हो रहा है, पैगाम है। पहले याय मुजम्मिल भी उतरी हुई थी, बात कहते कभी वो पहले थी ये थी, उसका पैगाम क्या है, क्यामुन लैल, रातों का क्याम, और ये क्या है, क्यामुन नहार, बंदाए मोमिन की जिंदगी का खुलासा क्या है। रात को अल्लाह ताला से इंस्ट्रक्शन ले, कुर्ब पाए, और दिन में लाके बंदों के साथ जाके शेयर करते हैं। अपने लिए ये जिंदगी मांग के देखें, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी यू विल लव योर लाइफ। वो मजा आपको किसी दावत, पार्टी, खाने, शादी, ब्याह, जॉब, हजारों डॉलर आप कमाते हैं एक महीने में। आप लाखों डॉलर की गाड़ी में बैठते हैं, करोड़ों डॉलर्स के घर में आप रहते हैं। आपको वो लज्जत नहीं मिलती जो कुरान आपको आपकी जिंदगी में मिल जाए तो मिलती है। दो आलम से करती है बेगान दिल को, अजब चीज है लज्जत आशने, अल्लाह का कुर्ब देती ही ये किताब है। और यही आज हमारे नसाब में पीछे है, लोगों की लिखी हुई, लोगों की कही बातें, उनकी तरतीब की मुरतब शुदा किताबें आगे और अल्लाह की किताब पीछे। तो बहरहाल इस आयत के उतरने के बाद अल्लाह के नबी के ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई कि आप अब इस पैगाम को दीजिए। हम पे तो नहीं दी ना अल्लाह ने जिम्मेदारी। वकजालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, हमने इसी तरह तुम्हें उम्मत वसत बनाया ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह बनो और लोग तुम्हारे ऊपर गवाह बने। तो आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है। नबी ने आपको मुझे कोई नया काम नहीं दिया, जो खुद करके गए वही हमें करने का हुक्म दिया, लेकिन हम कम सोचते हैं। और जितना ज्यादा आपकी जिंदगी इस मिशन के साथ जुड़ेगी, मिरेकल्स होंगे। सबसे पहली बात, इम्पॉसिबल पॉसिबल बनेगा। जहां लोग कह देंगे नो ये नहीं होगा, आप खुश होकर मुस्कुराएंगे, अब हो जाना है। लोगों ने कह दिया ना नहीं होना, अल्लाह जी अब मुझे पता है आपने ये कर देना, और हम लोगों का मुंह देखते रहते हैं। नहीं, सब ये कह रहे, सारी दुनिया एक तरफ, फिर अरब एक तरफ, फिर तौहीद पुख्ता होती है, फिर ताल्लुक बिल्ला बढ़ता है, फिर बंदा मुखलस बनता है। असल में बंदे की ना अल्लाह की नजर में वैल्यू बन रही होती है। इसमें एक शर्त है लेकिन, व रब्बक फकब्बिर, आपने नाम की बड़ाइयां कोई नहीं चाहिए। मुझे ना दिया करो इज्जत, मुझे ना प्रोटोकॉल दो, मेरा नाम ना कहीं रखो, मुझे तो बिल्कुल मट्टी समझो, मैं कहीं नहीं हूँ। व रब्बक फकब्बिर, रब का नाम बड़ा करो, अल्लाह के नाम का झंडा बंदा लेकर खड़ा हो। बस या बका पता है, ये बड़ी जिम्मेदारी है उस्तादों की जो लोगों को दीन देते हैं, जो दीन के नाम से मशहूर है किसी भी एंगल में। एडमिन भी उस्ताद होता है, आपको पता है, जिम्मेदार भी उस्ताद होता है। और वो क्या कि अपने दामन में कोई धब्बा ना लगने देना, किस चीज का, गुनाह का। इमाम बुखारी की मिसाल अक्सर इस आयत पे सुनाती हूँ। एक सफर के दौरान साथ वाले को बता दिया कि मेरे पास 1,000 अशरफियां जो मैंने सफर में रास्ते में इस्तेमाल के लिए ले ली है। उस बंदे की नीयत बदल गई, कश्ती थोड़ी सी आगे गई तो उसने खड़े होकर शोर मचा दिया, लोगों मेरी 1,000 अशरफियां थी, गुम गई गुम गई, तलाशी लो जी तलाशी। उन्होंने कहा ले लेते, जिधर भी होगी कश्ती में ही है ना, अभी के निकले तो है नहीं। सब की तलाशी ली, इमाम बुखारी की भी ली, कोई ना अशरफी मिली ना थैली मिली। कहा चुप करके बैठ जाओ, कोई नहीं है तुम्हारे पास। सफर खत्म हुआ, दूसरी तरफ निकल गए। कुछ अरसे के बाद उसी शख्स को इमाम बुखारी कहीं दिखे, रोक लिया, कहने लगा आपने मेरे से झूठ क्यों बोला। ठीक है मैं मानता हूँ कि मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैंने सोचा चलो आपकी तो कोई नहीं बात मानेगा तो मुझे मिल जाएंगी, लेकिन आपने मेरे से झूठ क्यों बोला। जब आपके पास अशरफियाँ, अशरफी मीन गोल्ड कॉइन्स, ये जो 24 कैरेट होता है, अगर आपके पास अशरफियाँ नहीं थी तो आपने क्यों कहा। इमाम बुहारी ने कहा मेरे पास थी तो फिर तलाशी में निकली क्यों नहीं। कहने लगे जब तेरी नीयत खराब हुई और कश्ती में तलाशी शुरू हो गई तो मैं समझ गया कि जब वो मेरी तलाशी लेंगे तो मेरे पास निकलेंगी। मैं लाख भी कह दूं ना कि ये मेरी है, लेकिन कोई नहीं मानेगा और मेरे पे इल्जाम लग जाएगा। और मैं हदीस नबी की देता हूँ, एक दफा मेरे पे इल्जाम लग गया तो लोग तो मेरे से ये इल्म लेना छोड़ देंगे। कहा अच्छा फिर क्या किया। कहा मैंने चुपके से वो अशरफियां पानी में डाल दी। ये है बरोचता पाउचर, बस ये आप पका पता। फिर हर उस चीज को रेत के फेंक दीजिए जो दीन को बदनाम करे। ये भी तो दीन वाले हैं, ये भी तो दर्स देते हैं, इनके भी तो घर में क्लास होती है, ये भी तो मस्जिद रन करते हैं, ये भी तो पढ़ते पढ़ाते। ऐसे लोगों को देख कर लोग ज्यादा भिदकते हैं, फिर जो असल दीन पे होता है ना लोगों को एक्सट्रीमिस्ट लगता है, वो फंडो लगता है, वो बहुत ऐसा है जी, वो ऐसा है, वो है। अनोमिनु कमा मन सुबह, साहबा की यही तो लोगों को चीज बुरी लगती थी और अल्लाह को यही प्यारी लगती थी। तो अल्लाह ने कहा कि अपना दामन साहबों को गंदगी से दूर, और ये गंदगी क्या थी जो दुनिया की चीजों की थी। अल्लाह के नबी ने तबलीग शुरू कर दी। शुरू में क्या हुआ, खुफिया तरीके से, वही वन बाय वन तरीके से होने लगी। अल्लाह के नबी सल्लम को आगाज में खामोशी और रासदारी के साथ तबलीग का हुक्म दिया। आप कहते हैं ना कि जहाँ पाबंदी होती है वहाँ खुल के ऐलान नहीं होते, ये दौर बनी इसराइल पे भी आया था, ये अल्लाह के नबी के ऊपर भी आया। सिर्फ अफराद को दावत दी जाती, कहीं ऐलानिया तबलीग ना की जाती। अफसोस की बात है कि आज उम्मत मुस्लिमा फिर उस जबूखाली पे आ गई। नॉन मुस्लिम मुल्कों में भी और अपने मुल्कों में भी कई जगह ऐसा हुआ, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ चीज़ों पे पाबंदी तो लगती है। जब जाली चीज़ आम हो जाएगी तो असली और नकली का फ़र्क कौन देगा? तो आपके मेरे लिए इसमें अमल है, आपकी कजन्स, आपकी दोस्तें, आपकी फैमिली फ्रेंड्स, वन बाय वन उनको दावत दीजिए। अपने पर्सनल फीलिंग्स शेयर, तजुर्बात, मुझे अच्छा लगा, मैंने ऐसे सोचा, मुझे ये मिला, ये किया, आपको कैसा लगता है? और आपको पता है कि नबी सल्लम पर शुरू में ईमान लाने वाले लोग कौन थे? पहले तो घर में खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, फिर दोस्त अबू बकर सिद्दीक, क्या नाम था अबू बकर का, क्या मतलब अबू बकर, बकर के बाप नाम तो नहीं, ये तो कुनियत है, नहीं पता। आपका नाम अब्दुल्ला था, और मैं हैरान हूं कि अल्लाह ने कुनियत इतनी मशहूर कर दी कि असल नाम लोगों को याद ही नहीं है। फिर इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन थे? आपने पाला था इनको, चचा के बेटे थे। और जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हो, ये कौन थे? गुलाम। शादी के मौके पर हजरत खदीजा ने आपको तोहफे में दिए थे। उस दौर में लोग गुलाम तोहफे में ऐसे देते थे जैसे आज मशीनें तोहफे में देते हैं काम करने की। अल्लाह के नबी ने उनको आजाद करके बेटा बना लिया, बल्कि लोग उनको जैद बिन मोहम्मद कहने लगे। फिर सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला ने इस रस्म को तोड़ दिया। सूरत मुद्दसिर के बाद पे दर पे कंटिन्यूसली वही का सिलसिला शुरू हो गया। सूरत फातिहा पहली मुकम्मल सूरत है जो आप पर नाजिल हुई। ये ऐसी है कि पहले कभी एक लेसन दिया जाए या कभी एक साल में, एक महीने में, कुछ ऐसा, लेकिन फिर रोज बुलाकर सबक दिया जाए। ये वो लज्जत है जिसको लेने के बाद बंदे के ख्वाब ही बदल जाते हैं। वो कहते हैं सब कुछ बदल जाता है, जिसमें लोगों को मजा आता है आप उसमें बेचैन हो जाते हैं, और जिसमें लोग बेचैन हो रहे होते हैं उसमें आप इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहला हुक्म नमाज का मिला, कब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज के मौके पे जिब्राइल अलैहि सलाम ने नमाज और वुजू का तरीका सिखाया, कब? मेराज के बाद अगले दिनों में। शुरू में जो नमाज थी ना इब्तदाई दौर में, ये तो वो नमाज है ना जो पांच नमाजें हैं, लेकिन जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए शुरू में आपको दो दो रकत नमाज पढ़ने का हुक्म मिल गया था। अल्लाह ताला ने शुरू से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज दी थी। और अब सवाल ये है, बड़ी अहम बात है, 3 साल की बात कर दी, अब ना तो उस वक्त को फर्ज नमाज है, ना रोज़ है, ना हज है, ना ज़कात है, करते क्या थे, क्या इबादत की सहाबा ने, नबी क्या करते होंगे उस वक्त? देखिए आज हमारे जिन में नेकी के कामों में सबसे पहली चीज़ नमाज है, फिर रोज़ है, उम्रा, हज, ये सब तो था ही नहीं। हम पकड़ते ही सारे अपने बच्चे को कहते हैं नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ये करो, वो करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सालों में, जिसको खुफिया तबलीग के साल कहते हैं, मुसलसल सहाबाए कराम का तस्किया कर रहे थे। वयुज़क्कीहिम लक़द मन्नल्लाहु अली आयत में हमने देखा तस्किया। देखिए एक सपारा पूरा पढ़ाना हो ना तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स चाहिए, मुनासिब सी स्पीड के साथ, हल्की फुल्की वजाहत। और अगर आपको किसी का दिल बदलना है अल्लाह के हुक्म से, तो आपको 2 घंटे चाहिए सिर्फ एक आयत या एक मौजू पे बात करने को। पहली को मैं दौरे कुरान कह देती हूँ, पूरा पारा पढ़ना होता है 2-2.5 घंटे में, उसमें रोज चूंकि हो रहा होता है तो इसलिए असर हो जाता है, लेकिन बहुत गहराई में बंदा नहीं जाता। लेकिन जहाँ सबीलुल जन्नाह कोर्स किया जाता है आपके साथ, यानी तजवीद और ग्रामर और थोड़ी बहुत, और लेकिन ज्यादा तफसीर, उसमें रंग गहराता है। ये ऐसी एक चीज तेज आंच पे पका लें, गल तो जाती है लेकिन टेस्ट नहीं आता। और एक है हल्के हल्के सहज पके सो मीठा हो, थोड़ा 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 लेकिन मुस्तकिल, हम क्या कहते हैं, एक जगह दर्स था, अमेरिका की बात है ये, बड़ी ही लीड क्लास थी जिधर में मेरा दर्स किसी ने रखवाया, ऐसे ट्रिप था कोई हमारा, तो उधर था, डालेस में था, मैं ह्यूस्टन में रहती थी तब। तो उस महफिल का रंग रूप भी अजीब ही था और वहाँ आने वालों का भी। तो बाद में जब ख़त्म हुआ, कोई बात पूछ लें कुछ कह लें, तो एक सिस्टर खड़ी हुई, माशाल्लाह बड़ी डिसेंट अच्छी मॉडर्न थी, कहने लगी आपने इतना अच्छा दर्स दिया, जो उन्होंने कहना था कह दिया, ऐसा दर्स तो हर साल में एक दफा होना चाहिए। तो मुझे समझ आ गया कि ये एक साल में सालाना दर्स सुनने वाले हैं, खाना तो रोज खाते हैं। आज अभी बस में हमें जो ब्रदर थे गाइड, उन्होंने क्या बात सुनाई थी कॉल, कि जो बंदा हर रोज एटलीस्ट एक सफा कुरान का नहीं पढ़ता, आइम्मा कराम क्या कहते थे, गोया के वो भूखा रहता है, ये फूड फॉर दी सोल है, एक वक्त का नाश्ता तो मिस हो जाए, फिर देखे जो हमारा रोना, नाश्ता नहीं किया, नहीं, वो तो सिर्फ चाय पी थी, नहीं मामा आप साथ बिस्किट भी खा रही थी, वो तो सिर्फ बिस्किट खाए थे, यानी अंडा ब्रेड पूरा रोटी पराठा नहीं खाया ना, जिस तरह दुनिया के खाने की हमारी बॉडी को क्रेविंग होती है ना और खा के एनर्जी मिलती है, इसी तरह दुआ कीजिए कि हमें इस कुरान के जरिए से तस्किए की क्रेविंग होने लगे, पेश करें अपने आप को किसी के सामने कि मुझे बदलो, मेरे पे मेहनत करो, धब्बा पड़ा हुआ है, धोइए धोइए धोइए, खूब रगड़ाई करिए, एक दिन वो धब्बा दूर होगा। तो ये था पहला दौर, तीन दौरों में से पहला दौर हमने कर लिया। अगला दौर था एलानिया तबलीग, कौन सी आयत नाजिल होती है, सूरत शोरा आयत 214 से 216, वंजिर अशीरतकल अकरबीन वक्फ जनाहक लिमन तबअक मिनल मुमिनीन फइन असौक फकुल इन्नी बरीउ मिम्मा तअमलून, अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराइए और ईमान लाने वालों में से जो लोग आपकी पैरवी इख्तियार करें इनके साथ तवाजो से पेश आइए, लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें तो उनसे कहिए कि जो कुछ तुम करते हो इससे मैं बरी जिम्मा हूँ। ये है जी वो आयत जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों पे खूब काम किया। सबसे पहले आपने क्या किया, बनु हाशिम को इकट्ठा किया और खाने की दावत दी, ये बड़ी अहम बात है, खाना खिलाकर तबलीग करना ये सुन्नत है, कुछ लोग खाने के शौक में आते हैं और जम जाते हैं। हमारी एक सिस्टर है आज एडमिन है, तो वो अपना किस्सा खुद सुनाती है, 20 बार सुना चुकी हैं और मुझे भी कहती हैं आप सुनाया करें लोगों को। मैं उस शहर में ऐसी ट्रिप के लिए गई 3-4 दिन के लिए, तो इनकी किसी दोस्त ने इनको दावत दी कि आइए हमारी टीचर आई हुई है, आप आइए वहाँ दर्स होगा। तो ये कहती है मैंने उनसे पहला सवाल क्या किया, वहाँ खाना होगा, खाने पीने की शौकीन है, खुद कहती है मैं 1 किलो सोनलवे का डब्बा के बैठे बैठे पूरा खा सकती हूँ, और देखने में अभी भी ऐसे लगती हैं जैसे कोई 20 से 25 साल की लड़की हो, माशाल्लाह 6 बच्चों की माँ और कोई 4-5 नवासे नवोसी हैं, लेकिन अल्लाह ने जिसम ऐसा दिया है मोटी नहीं होती। तो कहती है कि मैंने कहा खाना होगा, तो कहा होगा, कहती फिर मैं चलती हूँ, और फिर खुद ही रोक के कहती है मैं खाना खाने आई थी और मुझे कुरान मिल गया, मोहब्बत से खिलाएं, खजूरें खिलाएं, पानी पिलाएं, कुछ दें, पहले कुछ खिलाएं फिर बात करें, क्यों, इससे दिल में जगह बनती है।